एक महीना बीत गया। गौस ने आसामियों की सूची ने तैयार की और न ज्ञान शंकर ने ही फिर ताकीद की। गौस खां के स्वहित और स्वामी हित में विरोध हो रहा था और ज्ञान शंकर सोच रहे थे कि जब इजाफे से सारे परिवार का लाभ होगा तो मुझको क्या पड़ी है कि बैठे बिठाए सिर दर्द मोल लूँ। सैकड़ों गरीबों का गला तो मैं दबाऊं और चैन सारा घर करे। वह इस सारे अन्याय का लाभ अकेले ही उठाना चाहते थे और लोग भी शरीक हो यह उन्हें स्वीकार न था। अब उन्हें रात दिन यही दुश्चिंता रहती थी कि किसी तरह चाचा साहब से अलग हो जाऊं। यह विचार सर्वथा उनके स्वार्थानुकूल था। उनके ऊपर केवल तीन प्राणियों के भरण पोषण का भार था, आप, स्त्री और भावज। लड़का भी दूध पीता था। इलाके की आमदनी का बड़ा भाग प्रभा शंकर के काम आता था, जिनके तीन पुत्र थे, दो पुत्रियां, एक बहू, एक पोता और स्त्री पुरुष आप। ज्ञानशंकर अपने पिता के परिवार पालन पर झुंझलाया करते। आज से 30 साल पहले वह अलग हो गए होते तो आज हमारी दशा ऐसी न होती। चचा के सिर जो पड़ती उसे झेलते, खाते चाहे उपवास करते, हमसे तो कोई मतलब न रहता। बल्कि उस दशा में हम उनकी कुछ सहायता करते तो वह इसे ऋण समझते, नहीं तो आज भाड़ लीप कर हाथ काला करने के सिवा और क्या मिला। प्रभाशंकर दुनिया देखे हुए थे, भतीजे का यह भाव देखकर दबते थे, अनुचित बातें सुनकर भी अनसुनी कर जाते। दयाशंकर उनकी कुछ सहायता करने के बदले उल्टे उन्हीं के सामने हाथ फैलाते रहते थे, इसलिए दब कर रहने में ही उनका कल्याण था। ज्ञानशंकर दम्भ और द्वेष के आवेग में बहने लगे। एक नौकर चचा का काम करता था, दूसरे को खामखा अपने किसी न किसी काम में उलझा रखते। इसी फेर में पड़े रहते कि चचा के 8 प्राणियों पर जितना व्यय होता है उतना मेरे 3 प्राणियों पर हो। भोजन करने जाते तो बहुत सा खाना जूठा करके छोड़ देते। इतने पर भी संतोष न हुआ तो 2 कुत्ते पाले, उन्हें साथ बैठा कर खिलाते। यहाँ तक कि प्रभाशंकर डॉक्टर के यहाँ से कोई दवा ले आते तो आप भी उतने मूल्य की औषधि अवश्य लाते, चाहे उसे फेंकना ही क्यों न पड़े। इतने अन्याय पर भी चित्त को शांति न होती थी। चाहते थे कि महिलाओं में भी बमचख मचे। विद्या की शालीनता उन्हें नागवार मालूम होती। उसे समझाते कि तुम्हें अपने भले बुरे की जरा भी परवाह नहीं, मर्दों को इतना अवकाश कहाँ कि जरा जरा से बात पर ध्यान रखें, यह स्त्रियों का खास काम है। यहाँ तक कि इसी कारण उन्हें घर में आग लगाने का दोष लगाया जाता है, लेकिन तुम्हें किसी बात की सुधि ही नहीं रहती। आंखों से देखती हो कि घी का घड़ा लुढ़का जाता है पर जबान नहीं हिलती। विद्यावती यह शिक्षा पाकर भी उसे ग्रहण न करती थी। इसी बीच में एक ऐसी घटना हो गई जिसने इस विरोधाग्नि को और भी भड़का दिया। दयाशंकर यो तो पहले से ही अपने थाने में अंधेर मचाए हुए थे, लेकिन जब से ज्वाला सिंह उनके इलाके के मजिस्ट्रेट हो गए थे तब से तो वह पूरे बादशाह बन बैठे थे। उन्हें यह मालूम ही था कि डिप्टी साहब ज्ञानशंकर के मित्र हैं। इतना सहारा मेलजोल पैदा करने के लिए काफ़ी था। कभी उनके पास चिड़िया भेजते, कभी मछलियाँ, कभी दूध घी। स्वयं उनसे मिलने जाते तो मित्रवत व्यवहार करते। इधर सम्मान बढ़ा तो भय कम हुआ, इलाके को लूटने लगे। ज्वाला सिंह के पास शिकायतें पहुंची, लेकिन वह लिहाज के मारे न तो दयाशंकर से और न उनके घर वालों से इसकी चर्चा कर सके। लोगों ने जब देखा कि डिप्टी साहब भी हमारी फरियाद नहीं सुनते तो हार मानकर चुप हो बैठे। दयाशंकर और भी शेर हुए। पहले दाव घात देखकर हाथ चलाते थे, अब निशंक हो गए, यहाँ तक कि प्याला लबालब हो गया। इलाके में एक भारी डाका पड़ा, वह उसकी तहकीकात करने गए। एक जमींदार पर संदेह हुआ, तुरंत उसके घर की तलाशी लेने शुरू की। चोरी का कुछ माल बरामद हो गया, फिर क्या, उसी दम उसे हिरासत में ले लिया। जमींदार ने कुछ दे दिलाकर बला टाली, पर अभिमानी पुरुष था, यह अपमान न सहा गया। दूसरे दिन ज्वाला सिंह के इजलास में दरोगा साहब पर मुकदमा दायर कर दिया। इलाके में आग सुलग रही थी, हवा पाते ही भड़क उठी, चारों तरफ से झूठे सच्चे इस्तगासे होने लगे। अंत में ज्वाला सिंह को विवश होकर इन मामलों की छानबीन करनी पड़ी। सारा रहस्य खुल गया। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों को रिपोर्ट की। दयाशंकर मुअत्तल हो गए। उन पर रिश्वत लेने और झूठे मुकदमे बनाने के अभियोग चलने लगे। पासा पलट गया। उन्होंने जमींदारों को हिरासत में लिया था, अब खुद हिरासत में आ गए। लाला प्रभाशंकर के उद्योग से जमानत तो मंजूर हो गई, लेकिन अभियोग इतने सप्रमाण थे कि दयाशंकर के बचने की बहुत कम आशा थी। वह स्वयं निराश थे, सिट्टी पिट्टी भूल गई, मानो किसी ने बुद्धि हर ली हो। जो जवान थाने की दीवारों को कंपित कर दिया करती थी, वह अब हिलती भी न थी। वह बुद्धि जो हवा में किले बनाती रहती थी, अब इसी गुत्थी को भी न सुलझा सकती थी। कोई कुछ पूछता तो शून्य भाव से दीवार की ओर ताकने लगते। उन्हें खेद न था, लज्जा न थी, केवल विस्मय था कि मैं इस दलदल में कैसे फंस गया। वह मौन दशा में बैठा सोचा करते, मुझसे यह भूल हो गई, आमुक बात बिगड़ गई, नहीं तो कदापि नहीं फंसता। विपत्ति में भी जिस हृदय में सद्ज्ञान न उत्पन्न हो वह सूखा वृक्ष है, जो पानी पाकर पनपता नहीं बल्कि सड़ जाता है। ज्ञानशंकर इस दुरावस्था में अपने संबंधियों की सहायता करना अपना धर्म समझते थे, किंतु इस विषय में उन्हें किसी से कुछ कहते हुए संकोच ही नहीं होता। वरन जब कोई दयाशंकर के व्यवहार की आलोचना करने लगता तो वह उसका प्रतिवाद करने के बदले उसे सहमत हो जाते थे। लाला प्रभाशंकर ने बेटे को बरी कराने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। वह रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते थे। पुत्र प्रेम तो था ही, पर कदाचित उससे ही अधिक लोक निंदा की लाश थी। जो घराना सारे शहर में सम्मानित हो उसका यह प्रतन हृदय विदारक था। जब वो चारों तरफ से दौड़ धूप कर निराश हो गए तब एक दिन ज्ञान शंकर से बोले, आज जरा ज्वाला सिंह के पास चले जाते, तुम्हारे मित्र हैं, शायद कुछ रियायत करें। ज्ञान शंकर ने विस्मित भाव से कहा, मेरा इस वक्त उनके पास जाना सर्वथा अनुचित है। प्रभाशंकर, मैं जानता हूँ और इसलिए अब तुमसे जिक्र नहीं किया, लेकिन अब इसके बिना काम नहीं चलता दिखाई देता। डिप्टी साहब अपने इजलास से बरी कर दें, फिर आगे हम देख लेंगे। वह चाहें तो सबूतों को निर्बल बना सकते हैं। ज्ञान रंजन, पर आप इसकी कैसे आशा रखते हैं कि मेरे कहने से वह अपने ईमान का खून करने पर तैयार हो जाएंगे? प्रभाशंकर ने आग्रहपूर्वक कहा, मित्रों के कहने सुनने का बड़ा असर होता है। बूढ़ों की बातें बहुधा वर्तमान सभ्य प्रभा के प्रतिकूल होती हैं। युवकगण इन बातों पर अधीर हो उठते हैं, उन्हें बूढ़ों का यह अज्ञान अच्छा मिसा जान पड़ता है। ज्ञानशंकर चिढ़कर बोले, जब आपकी समझ में बात ही नहीं आती तो मैं क्यों कहूँ? मैं अपने को दूसरों की निगाह में गिराना नहीं चाहता। प्रभाशंकर ने पूछा, क्या अपने भाई की सिफारिश करने से अपमान होता है? ज्ञानशंकर ने कटुभाव से कहा, सिफारिश चाहे किसी काम के लिए हो, नीची बात है, विशेष करके ऐसे मामले में। प्रभाशंकर बोले, इसका अर्थ तो यह है कि मुसीबत में भाई से मदद की आशा न रखनी चाहिए। मुसीबत उन कठिनाइयों का नाम है जो दैवीय और अनिवार्य कारणों से उत्पन्न हो। जानबूझकर आग में कूदना मुसीबत नहीं है, लेकिन जो जानबूझकर आग में कूदे या उसकी प्राण रक्षा न करनी चाहिए। इतने में बड़ी बहू दरवाजे पर खड़ी हो गई और बोली, चलकर लल्लू को जरा समझा के उन्हें देते, रात को भी खाना नहीं खाया और इस वक्त अभी तक हाथ मुँह नहीं धोया। प्रभाशंकर खिन्न होकर बोले, कहाँ तक समझाऊँ, समझाते समझाते तो हार गया। बेटा, मेरे चित्त की समय जो दशा है वह बयान नहीं कर सकता। तुमने जो बातें कही हैं वो बहुत माकूल हैं, लेकिन मुझ पर इतनी दया करो, आज डिप्टी साहब के पास जरा चले जाओ। मेरा मन कहता है कि तुम्हारे जाने से कुछ न कुछ उपकार अवश्य होगा। ज्ञानशंकर बगले झांक रहे थे कि बड़ी बहू बोल उठी, यह जा चुके। लल्लू कहते थे कि ज्ञानो झूठ भी जाकर कुछ कह दे तो सारा काम बन जाए, लेकिन इन्हें क्या परवाह है, चाहे कोई चूल्हे भाड़ में जाए, फंसाना होता तो चाहे दौड़ धूप करते भी बचाने कैसे जाए, हेठी न हो जाएगी। प्रभाशंकर ने तिरस्कार के भाव से कहा, क्या भी बात की बात कहती हो, अंदर जाकर बैठती क्यों नहीं? बड़ी बहू ने कुटिल नेत्रों से ज्ञानशंकर को देखते हुए कहा, मैं तो बेलाग कहती हूँ, किसी को भला लगे या बुरा, जो बात इनके मन में है वह मेरी आंखों के सामने है। ज्ञानशंकर मर्माहत होकर बोले, चचा साहेब, आप सुनते हैं इनकी बातें या मुझे इतना नीच समझती हैं? बड़ी बहू ने मुंह बनाकर कहा, यह क्या सुनेंगे, कान भी हो, सारी उम्र गुलामी करते कटी, अब भी वही आदत पड़ी हुई है, तुम्हारा हाल मैं जानती हूँ। प्रभाशंकर ने व्यथित होकर कहा, ईश्वर के लिए चुप रहो। बड़ी बहू तेरियों चढ़ाकर बोली, चुप क्यों रहो, किसी का डर है? यहाँ तो जान पर बनी हुई है और यह अपने घमंड में भूले हुए हैं, ऐसे आदमी का तो मुंह देखना पाप है। प्रभाशंकर ने भतीजे की ओर दीनता से देखकर कहा, बेटा, यही समय आपे में नहीं है, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना, लेकिन ज्ञानशंकर ने ये बातें न सुनी। चाची के कठोर वाक्य उनके हृदय को मथ रहे थे। बोले, तुम्हें आप लोगों के साथ रहकर कौन सा स्वर्ग का सुख भोग रहा हूँ? बड़ी बहू, जो अभिलाषा मन में हो वह निकाल डालो, जब अपनापा ही नहीं तो एक घर में रहने से थोड़े ही एक हो जाएंगे। ज्ञान रंजन, तो आप लोगों की यही इच्छा है तो यही सही, मुझे निकाल दीजिए। बड़ी बहू, हमारी इच्छा है, आज महीने से तुम्हारा रंग देख रही हूँ, ईश्वर ने आंखें दी हैं, धूप में बाल नहीं सफ़ेद किए हैं, हम लोग तुम्हारी आंखों में कांटे की तरह खटकते हैं, तुम समझते हो यह लोग हमारा सर्वस्व खा जाते हैं? जब तुम्हारे मन में इतना कमीनापन आ गया तो फिर? प्रभाशंकर ने ठंडी सांस लेकर कहा, या ईश्वर मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। बड़ी बहू ने पति को कुपित नेत्रों से देख कर कहा, तुम्हें यह बहुत प्यारे हैं, जाकर इनकी जूतियाँ सीधी करो। जो आदमी मुसीबत में साथ न दे वह दुश्मन है, उससे दूर रहना ही अच्छा है। ज्ञान शंकर, तो यह धमकी किसे देती हो? कल के बदले आज ही हिस्सा बांट कर लो। बड़ी बहू, क्या तुम समझते हो कि हम तुम्हारा दिया खाती हैं? ज्ञान शंकर, इन बातों का प्रयोजन ही क्या है? बड़ी बहू, नहीं, तुम्हें यही घमंड है। ज्ञान शंकर, अगर यही घमंड है तो क्या न्याय है? जितना आपका खर्च है उतना मेरा कभी नहीं है। बड़ी बहू ने पति की ओर देखकर व्यंग भाव से कहा, कुछ सुन रहे हो सपूत की बातें? बोलते क्यों नहीं, या मुंह में दही जमा हुआ है? बाप हजारों रुपए साल साधु भिखारियों को खिला दिया करते थे, मरते दम तक पालकी के 12 कहार दरवाजे से नहीं टले, इन्हें आज हमारी रोटियां अखर रही हैं। लाला, हमारा जस मानो कि आज रईसों की तरह चैन कर रहे हो, नहीं तो मुंह में मक्खियां आती जाती। प्रभाशंकर ये बातें न सुन सके, उठकर बाहर चले गए। बड़ी बहू मोर्चे पर अकेले ठहर न सकी, घर में चली गई, लेकिन ज्ञान शंकर वहीं बैठे रहे। उनके हृदय में एक दाह सी हो रही थी। इतनी निष्ठुरता, इतनी कृतघ्नता, मैं कमीना हूँ, मैं दुश्मन हूँ, मेरी सूरत देखना पाप है, जिंदगी भर हमको नीचा खसोटा, आज यह बातें, यह घमंड, देखता हूँ यह घमंड कब तक रहता है, इसे तोड़ न दिया तो कहना। ये लोग सोचते होंगे, मालिक तो हम हैं, कुंजियाँ तो हमारे पास है, इसे जो दे देंगे वह ले लेगा, एक एक चीज का आधा करा लूँगा, बुढ़िया के पास ज़रूर रुपए हैं। पिताजी ने सब कुछ इन्हीं के लोगों पर छोड़ दिया था, इसने काट कपट कर 10-20 हज़ार जमा कर लिया है, बस उसी का घमंड है और कोई बात नहीं। द्वेष में दूसरों को धनी समझने की चेष्टा होती है। ज्ञान शंकर इन कुकल्पनाओं से भरे हुए बाहर आए तो चचा को दीवान खाने में मुंशी इजादुद हुसैन से बातें करते पाया। यह मुंशी ज्वाला सिंह के इजलास के अहलमत थे, बड़ी बातों नहीं बड़े चलते पुरजे। वह कह रहे थे, आप घबराए नहीं, खुदा ने चाह तो बाबू दया शंकर बेदाग भरी हो जाएंगे। मैंने महरी की मार्फत उनकी बीवी को ऐसा चंग पर चढ़ाया है कि दरोगा जी को बिलाबरी कराए डिप्टी साहब का दामन न छोड़ेगी। 100-200 रुपये खर्च हो जाएंगे, पर क्या मुझाएगा, आबरू तो बच जाएगी। अकस्मात ज्ञान शंकर को वहाँ देख कर कुछ झेप गए। प्रभा शंकर बोले, रुपए जितने दरकार हो ले जाएं, आपकी कोशिश से बात बन गई तो हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूँगा। इजाद हुसैन ने ज्ञान शंकर को देखते हुए कहा, बाबू ज्वाला सिंह के दोस्त का कुछ हक तो जरूर ही अदा करेंगे। जबान से चाहे जितने ही बेनियाज बने, लेकिन दिल पे वह आपका जरूर लिहाज करते हैं। मैं भी इस पर खूब रंग चढ़ाता रहता हूँ। कल आपका जिक्र करते हुए मैंने कहा, वह तो 2-3 दिन से दाना पानी तक नहीं किए हुए हैं। यह सुनकर कुछ गौर करने लगे, बाद अजा उठाकर अंदर चले गए। प्रभाशंकर ने मुंशी को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा, पर ज्ञान शंकर ने तुक्ष दृष्टि से देखा और ऊपर चले गए। विद्यावती उनकी राह देख रही थी, बोली, आज देर क्यों कर रहे हो, भोजन तो कभी से तैयार है। ज्ञान शंकर ने उदासीनता से कहा, क्या खाऊं, कुछ मिले भी? मालिक और मालकिन दोनों ने आज से मेरा निपटारा कर दिया, उन्हें मेरी सूरत देखने से पाप लगता है, ऐसों के साथ रहने से तो मर जाना अच्छा है। विद्यावती ने सचंक होकर पूछा, क्या बात हुई? ज्ञान शंकर ने इस प्रश्न का उत्तर विस्तार के साथ दिया। उन्हें आशा थी कि इन बातों से विद्या की शांति प्रियता को आघात पहुंचेगा, किंतु उन्हें कितनी निराशा हुई जब उसने सारी कथा सुनने के बाद कहा, तुम्हें ज्वाला सिंह के यहाँ चले जाना चाहिए था, चाचा जी की बात रह जाती, ऐसे अवसरों पर तो अपने पराये की पहचान होती है। तुम्हारी ओर से आनाकानी देखकर उन लोगों को क्रोध आ गया होगा। क्रोध में आदमी अपने मन की बात नहीं कहता, वह केवल दूसरों का दिल दुखाना चाहता है। ज्ञान शंकर खिन्न होकर बोले, तुम्हारी बातें सुनकर जी चाहता है कि अपना और तुम्हारा दोनों का सिर फोड़ लें। उन दोनों के कटु वाक्यों को फूल पान समझ लिया, मुझे को उपदेश देने लगी। मुझे तो यह लज्जा आ रही है कि इस गुर्गे इजाद हुसैन ने मेरी तरफ से न जाने क्या क्या रद्दे जमाए होंगे, और तुम मुझे सिफारिश करने की शिक्षा देती हो। मैं ज्वाला सिंह को जता देना चाहता हूँ कि इस विषय में सर्वथा स्वतंत्र हूँ, गरजमंद बनकर उसकी दृष्टि में नीचा बनना नहीं चाहता। विद्या ने विस्मित होकर पूछा, क्या उनसे यह कहने जाओगे? ज्ञान शंकर, अवश्य जाऊँगा, दूसरे की आबरू के लिए अपनी प्रतिष्ठा क्यों खोऊं? विद्या, भला वह अपने मन में क्या कहेंगे, क्या इसे तुम्हारा द्वेष न प्रकट होगा? ज्ञान शंकर, तुम मुझे जितना मूर्ख समझते हो उतना नहीं हो, मुझे मालूम है कि कौन बात किस ढंग से करनी चाहिए। विद्या चिंतित नेत्रों से भूमि की ओर देखने लगी, उसे पति की संकीर्णता पर खेद हो रहा था, लेकिन कुछ और कहते डरती थी कि कहीं उनकी दुष्कामना और भी दृढ़ न हो जाए। इतनी मत आशंका करके स्त्री भोजन करने के लिए बुलाने आई। उधर श्रद्धा ने आकर बड़ी बहू को मनाना शुरू किया। विद्या ने लाला प्रभाशंकर को मनाने के लिए तेज शंकर को भेजा, पर उनसे भी कोई भोजन करने न उठा। प्रभाशंकर को यह ग्लानि नहीं हो रही थी कि मेरी स्त्री ने ज्ञान शंकर को अपनी बातें सुनाई। बड़ी बहू को शोक था कि मेरे पुत्र का कोई हितैषी नहीं, और ज्ञान शंकर को यह जलन थी कि यह लोग मेरे खाकर मुझे को आँख दिखाते हैं। शुद्धाग्नि के साथ क्रोधाग्नि भी भड़कती जाती थी। विवाद में हम बहुधा अत्यंत नीतिपरायण बन जाते हैं, पर वास्तव में इससे हमारा अभिप्राय यही होता है कि विपक्षी की जबान बंद कर दे। इन चंद घंटों में ही ज्ञान शंकर की नीतिपरायणता ईर्ष्याग्नि में भस्म हो चुकी थी। जिस प्राणी के हित के लिए ज्वालाशग्नि से कुछ कहना उन्हें असंगत जान पड़ता था, उसी के अहित के लिए वह वहाँ जाने को तैयार हो गए। उन्होंने इस प्रसंग की सारी बातें मन में निश्चिंत कर ली थी। इस प्रश्न को ऐसे ही कुशलता से उठाना चाहते थे कि नियत का पर्दा न खोलने पाए। दूसरे दिन प्रातःकाल ज्यों ही 9 बजे ज्ञान शंकर ने पैर गाड़ी संभाली और घर से निकले, द्वार पर लाला प्रभाशंकर अपने दोनों पुत्रों के साथ टहल रहे थे। ज्ञान शंकर ने मन में कहा, बुड्ढा 60 बरस का हो गया है, पर अभी तक वही जवानी की ऐंठ है, कैसे आकड़ कर चलता है। अब देखता हूँ मिश्री और मक्खन कहाँ मिलता है, लौंडे मेरी और घूर कैसे रहे, मानो निगल जाएंगे। वर्षा का आगमन हो चुका था, घटा उमड़ी हुई थी, मानो समुद्र आकाश में चढ़ गया हो। सड़कों पर इतना कीचड़ था कि ज्ञान शंकर की पैर गाड़ी मुश्किल से निकल सकी। सीटों से कपड़े खराब हो गए। उन्हें म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों पर क्रोध आ रहा था कि ये सब के सब स्वार्थी, खुशामदी और चक्के हैं। चुनाव के समय भिखारियों की तरह द्वार द्वार घूमते फिरते हैं, लेकिन मेंबर होते ही राजा बन बैठते हैं। उस कठिन तपस्या का फल यह निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। यह बड़ी भूल है कि मेंबरों को एक निर्दिष्ट काल के लिए रखा जाता है। वोटरों को अधिकार होना चाहिए कि जब किसी सदस्य को जी चुराते देखें तो उसे पदच्युत कर दें। यह मिथ्या है कि इस दशा में कोई कर्तव्यपरायण मनुष्य मेंबरी के लिए खड़ा न होगा। जिन्हें राष्ट्रीय उन्नति की धुन है, वो प्रत्येक अवस्था में जाति सेवा के लिए तैयार रहेंगे। मेरे विचार में जो लोग सच्चे अनुराग से काम करना चाहते हैं, वह इस बंधन से और भी खुश होंगे। इससे उन्हें अपनी कर्मपरायणता से बचने का एक साधन मिल जाएगा। और यदि हमें जाति सेवा का अनुराग नहीं, तो म्युनिसिपल हॉल में बैठने की तृष्णा क्यों। क्या इसे इज्जत होती है? सिपाही बनकर कोई लड़ने से जीव चुराए, यह उसकी कीर्ति नहीं अपमान है। ज्ञानशंकर इन्हीं विचारों में मग्न थे कि ज्वाला सिंह का बंगला आ गया। वह घोड़े पर हवा खाने जा रहे थे। साइस घोड़ा कसे खड़ा था। ज्ञानशंकर को देखते ही बड़े प्रेम से मिले और इधर उधर की बातें करने लगे। उन्हें भ्रम हुआ कि यह महाशय अपने भाइयों की सिफारिश करने आए होंगे, इसलिए उन्हें इस बातों से लगाना चाहते थे कि उस मुकदमे की चर्चा ही न आए। उन्हें दयाशंकर के विरुद्ध कोई सबल प्रमाण न मिला था। यह वह जानते थे कि दयाशंकर का जीवन उज्ज्वल नहीं है, परंतु यह अभियोग सिद्ध न होता था। उनको बरी करने का निश्चय कर चुके थे। ऐसी दशा में वह किसी को यह विचार करने का अवसर नहीं देना चाहते थे कि मैंने अनुचित पक्षपात किया है। ज्ञानशंकर के आने से जनता के संदेह की पुष्टि हो सकती थी। जनता को ऐसे समाचार बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। अर्दली और चपरासी अपना गौरव बढ़ाने के लिए ऐसी खबरें बड़ी तत्परता से फैलाते हैं। बोले, कहिए आपके असामी सीधे हो गए? ज्ञानशंकर, जी नहीं, उन्हें काबू में करना इतना आसान नहीं। चाचा साहब ने उन्हें सिर चढ़ा दिया है। मैं इधर ऐसे झमेलों में पड़ रहा था कि इस विषय में कुछ करने का अवकाश ही न मिला। जला सिंह डरे की भूमिका तो नहीं है? तुरंत पहलू बदलकर बोले, भाई साहब, मैंने यह नौकरी क्या कर ली, एक जंजाल सिर ले लिया। प्रातःकाल से संध्या तक सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती, बहुधा 10-11 बजे रात तक काम करना पड़ता है, और इतना ही होता तो भुगत लेता। इसके साथ साथ यह चिंता भी लगी रहती है कि ऊपर वाले खुश रहें। आप जानते ही हैं, अब की वर्षा बहुत हुई है, मेरे इलाके में सैकड़ों गाँव में बाढ़ आ गई है। खेतों का तो कहना ही क्या, किसानों को झोपड़ियाँ तक बह गई। जमींदारों ने आधी मालगुजारी की छूट की प्रार्थना की है, और यह सर्वथा न्यायानुकूल है, किंतु हाकिमों को यह अच्छा मालूम होते है कि इन दरखास्तों को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए। यद्यपि वो प्रत्यक्ष ऐसा कहते नहीं, पर हानियों की जांच में इतनी बाधाएं डालते हैं कि जांच व्यर्थ हो जाती है। अब यदि मैं जानकर अनजान बनूं और स्वच्छंदता से जांच करूं, तो अवश्य मुझ पर फटकार पड़ेगी। लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगेंगे। यहाँ की हवा ही कुछ ऐसी बिगड़ी हुई है कि मनुष्य इस अन्याय से किसी भांति बच नहीं सकता। अपने अन्य सहवर्गियों की दशा देखकर बस यही इच्छा होती है कि इस्तीफा देकर घर की राह लो। मनुष्य कितना स्वार्थप्रिय और चापलूस बन सकता है, इसका यहाँ से उत्तम उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकेगा। यदि साहेब बहादुर जरा सा इशारा कर दे कि आमदनी के टैक्स की जांच अच्छी तरह से की जाए, तो विश्वास मानिए हमारे मित्रगण 2 ही दिनों में टैक्स को बढ़ाकर 2 गुना 3 गुना कर देंगे। यदि यह इशारा हो जाए कि अब की तकाबी का जरा हाथ रोक कर दी जाए, तो समझ लीजिए कि वह बंद हो जाएगी। इन महानुभावों की बातें सुनकर ऐसी घृणा होती है कि उनका मुंह न देखो। न कोई वैज्ञानिक निरूपण, न कोई राजनीतिक या आर्थिक बात, न कोई साहित्य की चर्चा, बस मैंने कह दिया, साहब ने यह कहा तो मैंने यह उत्तर दिया। आपसे यथार्थ कहता हूँ, कोई छटा हुआ शोधा भी अपनी कपट लीलाओं की डींगे यों न मारेगा। खेद तो यह है कि इस रोग से पुराने विचार के बुड्ढे भी ग्रसित नहीं। हमारा नवशिक्षित वर्ग उनसे कहीं अधिक इस रोग से जर्जरित देख पड़ता है। मार्ले, मिल और स्पेंसर सभी स्वार्थ सिद्धांत के सामने दब जाते हैं। अजी, यहाँ ऐसे ऐसे भद्र पुरुष पड़े हैं जो खानस्वामी और अर्दलियों की पूजा किया करते हैं, केवल इसलिए कि वह साहेब से उनकी प्रशंसा किया करें। जिसे अधिकार मिल गया, वह समझने लगता है अब मैं हाकुम हूँ। अब जनता से, देशबंधुओं से मेरा कोई संबंध नहीं है। अंग्रेज अधिकारियों के सम्मुख जाएंगे तो नम्रता, विनय और शील के पुतले बन जाएंगे, मानव ईश्वर के दरबार में खड़े हैं। पर जब दौरे पर निकलेंगे तो प्रजा और जमींदारों पर ऐसा रूप जमाएंगे कि मानो उनके भाग्य के विधाता हैं। ज्वाला सिंह ने स्थिति को खूब बढ़ाकर दर्शाया, क्योंकि इस विषय में वह ज्ञान शंकर के विचारों से परिचित थे। उनका अभिप्राय केवल यह था कि इस समय दया शंकर के अभियोग की चर्चा न आने पाए। ज्ञान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तो आपसे पहले ही दिन कहा था, किंतु आपको विश्वास न आता था। अभी तक केवल अपने सहवर्गियों की कपट नीति का अनुभव हुआ। कुछ दिन और रहिए तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की चालें देखकर तो आप दंग रह जाएंगे। यह सब उनको कठपुतली बनाकर नचाएंगे। बदनामी से बचने को इसके सिवा और उपाय नहीं कि उन्हें मुंह न लगाया जाए। आपका अहलमद इजाद हुसैन एक ही घाघ है, उसे होशियार रहिएगा। वह तरह तरह से आपको अपने पंजे में लाने की कोशिश करेगा। आज ही मैंने उसके मुंह से ऐसी बातें सुनी हैं जिनसे विदित होता है कि वह आपको धोखा दे रहा है। उसने आपसे कदाचित मेरी ओर से दयाशंकर की सिफारिश की है। यद्यपि मुझे दयाशंकर से उतनी सहानुभूति है जितनी भाई की भाई के साथ हो सकती है, तथापि मैं ऐसा दृष्ट नहीं हूँ कि मित्रता से अनुचित लाभ उठाकर न्याय का बाधक बनूं। मैं कुमार का पक्ष कदापि न ग्रहण करूंगा, चाहे मेरे पुत्र के संबंध में क्यों न हो। मैं मनुष्यत्व को बहादुर प्रेम से उच्चतर समझता हूँ। मैं उन आदमियों में हूँ कि यदि ऐसी दशा में आपको सहृदयता की ओर झुका हुआ देखूँ तो आपको उसे बाज रखूँ। ज्वाला सिंह मनोविज्ञान की ज्ञाता थे, समझ गए कि ये महाशय इस समय अपने चाचा से बिगड़े हुए हैं। वह नीति परायणता की उसी का बुखार है। द्वेष और वैमनस्य से कहाँ तक जा सकता है, इसका अनुभव हो गया। उनकी दृष्टि में ज्ञान शंकर की जो प्रतिष्ठा थी वह लुप्त हो गई। भाई का अपने भाई की सिफारिश करना सर्वथा स्वाभाविक और मानव चरित्रानुकूल, इसे वह बहुत बुरा नहीं समझते थे। किंतु भाई का अहित करने के लिए नैतिक सिद्धांतों का आश्रय लेना वह एक अमानुषिक व्यापार समझते थे। ऐसे दुष्प्रकृतिक मनुष्यों को जो आठों पहर न्याय और सत्य की हाँक लगाते फिरते हों, मर्माहत करने का यह अच्छा अवसर मिला। बोले, आपको भ्रम हुआ है। इजाद हुसैन ने मुझसे इस विषय में कोई बातचीत नहीं की है और न इसकी जरूरत ही थी, क्योंकि मैं अपने फैसले में दयाशंकर को पहले ही निरपराध लिख चुका हूँ और सबको यह भली भांति मालूम है कि मैं किसी की नहीं सुनता। मैंने पक्षपात रहित होकर यह धारणा की है और मुझे आशा है कि आप यह सुनकर प्रसन्न होंगे। ज्ञानशंकर का मुंह पीला पड़ गया, मानो किसी ने उसके घर में आग लगाने का समाचार दिया हो। हृदय में तीर सा चुभ गया, अवाक रह गए। ज्वाला सिंह, गवाह कमजोर थे, मुकदमा बिल्कुल बनावटी था। ज्ञानशंकर, यह सुनकर असीम आनंद हुआ, आप हजारों धन्यवाद। चचा साहब तो सुनकर खुशी से बांवले हो जाएंगे। ज्वाला सिंह इस दबी चुटकी से पीड़ित होकर बोले, यह कानून की बात है, मैंने कोई अनुग्रह नहीं किया। ज्ञानशंकर, आप चाहे कुछ कहें पर मैं तो इसे अनुग्रह ही समझूंगा। मित्रता कानून की सीमाओं को अज्ञात रूप से विस्तृत कर देती है। इसके सिवा आप लोगों को भी तो पुलिस का दबाव मानना पड़ता है। उनके द्रोही बनने से आप लोगों के मार्ग में कितनी बाधाएं पड़ती हैं, इसे भी तो विचारना ही पड़ता है। ज्वाला सिंह इस व्यंग से और भी तिलमिला उठे, गर्व से बोले, यहाँ जो कुछ करते हैं न्याय के बल पर करते हैं, पुलिस का ईश्वर का अनुचित दबाव भी नहीं मान सकते। आपको इन बातों में कुछ वैमनस्य की गंध आती है। मुझे संदेह होता है कि दयाशंकर का मुक्त होना आपको अच्छा नहीं लगा। ज्ञानशंकर ने उत्तेजित होकर कहा, यदि आपको ऐसा संदेह है तो यह कहने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा कि इतने दिनों तक साथ रहने पर भी आप मुझसे सर्वथा अपरिचित हैं। मेरी प्रकृति इतनी कितनी ही दुर्बल हो पर अभी इस अधोगति को नहीं पहुँचे कि अपने भाई की ओर हाथ उठावें। मगर यह कहने में मुझे संकोच नहीं है कि पात्र स्नेह की उपेक्षा मेरी दृष्टि में राष्ट्रहित का महत्व कहीं अधिक है और जब इन दोनों में विरोध होगा तो मैं राष्ट्रहित की ओर झुकूंगा। यदि से आप वैमनस्य ईर्ष्या समझे तो यह आपकी सज्जनता है। मेरी नीति शिक्षा ने मुझे यही सिखाया है और यथासाध्य उसका पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। जब एक व्यक्ति विशेष से जनता का उपकार होता है तो हमारा धर्म है कि उस व्यक्ति का तिरस्कार करें और उसे सीधे मार्ग पर लाएं, चाहे वह कितना ही आदमी हो। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण अप्राप्य नहीं है जहाँ राष्ट्रीय कर्तव्य ने कुल हित पर विजय पाई है। ऐसी दशा में जब आप मुझ पर दुराग्रह का दोषारोपण करते हैं तो मैं इसके सिवा और क्या कह सकता हूँ कि आपकी नीति शिक्षा और इथिक्स ने आपको कुछ ही लाभ नहीं पहुँचाया। यश कहकर ज्ञान शंकर बाहर निकल आए। जिस मनोरथ से वह इतने सवेरे यहाँ आए थे उसके यूं विफल हो जाने से उनका चित्त बहुत खिन्न हो गया था। हाँ, यह संतोष अवश्य था कि मैंने इन महाशय के दांत खट्टे कर दिए और यह फिर मुझसे ऐसी बातें करने का साहस न कर सकें। ज्वाला सिंह ने भी उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। वह सोच रहे थे कि इस मनुष्य में बुद्धिबल और दुर्जनता का कैसा विलक्षण समावेश हो गया है। चातुरी कपट के साथ मिलाकर दो आतशी शराब बन जाती है। इस फुटकर से कुछ तो आंखें खुली होंगी, समझ गए कि कूटनीति के परखने वाले संसार में लोप नहीं हो गए। ज्ञान शंकर यहाँ से चले तो उनकी दशा उस जुआरी की सी थी जो जुए में हार गया हो और सोचता हो कि ऐसी कौन सी वस्तु दांव पर लगाऊं कि मेरी जीत हो जाए। उनका चित्त मध्यम उद्विग्न हो रहा था। ज्वाला सिंह को यद्यपि उन्होंने तुर्की पतुर्की जवाब दिया था फिर भी उन्हें प्रतीत होता था कि मैं गहरी चोट न कर सका। अब ऐसी कितनी बातें याद आ जा रही थी जिनसे ज्वाला सिंह के हृदय पर आघात किया जा सकता था, और कुछ नहीं तो रिश्वत का ही दोष लगा देता। खैर, फिर कभी देखा जाएगा। अब उन्हें राष्ट्रप्रेम और मनुष्यत्व का वह उच्चादर्श भी हास्यास्पद सा जान पड़ता था। इसके आधार पर उन्होंने ज्वाला सिंह को लज्जित करना चाहा था। वह ज्यों का ज्यों इस सारी स्थिति का निरूपण करते थे उन्हें ज्वाला सिंह का व्यवहार सर्वथा असंगत जान पड़ता था। मान लिया कि उन पर मेरी ईर्ष्या का रहस्य खुल गया तो सहृदयता और शालीनता उसमें भी थी कि वह मुझसे सहानुभूति प्रकट करते, मेरे आंसू पोंछते। ईर्ष्या के मानव स्वभाव एक ही अंग है, चाहे वह कितना ही अवहेलनीय क्यों न हो। यदि कोई मनुष्य इसके लिए मेरा अपमान करे तो मैं इसका कारण उसकी आत्मिक पवित्रता नहीं वरन मिथ्याभिमान है। ज्वाला सिंह कोई ऋषि नहीं, देवता नहीं, और न संभव है कि ईर्ष्या द्वेष से कभी उनका हृदय प्रभावित न हुआ हो। उनकी यह गर्वपूर्ण नीतिज्ञता और धर्मपरायणता स्वयं उस ईर्ष्या का फल है जो उनके हृदय में अपनी मानसिक लघुता के ज्ञान से प्रज्वलित हुई है। यह सोचते हुए घर पहुंचे तो अपने दोनों छोटे चचेरे भाइयों को अपने कमरे में किताबें उलटते पलटते देखा। यद्यपि यह कोई असाधारण बात न थी, पर ज्ञान शंकर इस समय मानसिक अशांति से पीड़ित हो रहे थे, जल गए और दोनों लड़कों को डांट कर भगा दिया। उन दोनों ने अवश्य मुझे छेड़ने के लिए इन शैतानों को यहाँ भेज दिया। नीचे इतना बड़ा दीवान खाना है, दो कमरे हैं, क्या उनके लिए इतना काफ़ी नहीं है कि मेरे एक छोटे से कमरे को भी नहीं देख सकते? क्या इस पर भी दांत है? मुझे घर से निकालने की ठानी है क्या? इस मामले को अभी भी साफ कर लेना चाहिए। यह कदापि नहीं हो सकता कि मुझे लोग दबाते जाएं और मैं चूँ न करूँ। मन में निश्चय करके उन्होंने तत्क्षण अपने चाचा के नाम में पत्र लिखा। मान्यवर, यह बात मेरे लिए असह्य है कि आपके सुपुत्र मेरी अनुपस्थिति में मेरे कमरे में आकर उधम मचाएं और मेरी वस्तुओं का सर्वनाश करें। मैं चाहता हूं कि आज घर का बंटवारा हो जाए, लड़कों को ताकीद कर दी जाए कि वह भूलकर भी मेरे मकान में पदक्षेप न करें, अन्यथा मैं उनकी ताड़ना शुरू करूं तो आपको या चाची जी को मुझे शिकायत करने का कोई अधिकार न रहेगा। इसका ध्यान रखिएगा कि मुझे जो भाग मिले वह गार्हस्थ आवश्यकताओं के अनुकूल हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि वह पृथक हो जिससे मैं अपने आप को अपना समझ सकूँ और आते जाते उठते बैठते आग्रह नेत्रों और व्यंग शरों का लक्षण बनूँ। यह पत्र कहार को देकर वह उत्तर का इंतजार करते रहे। सोच रहे थे कि देखें बुढ़ा अब की क्या चाल चलता है। एक क्षण में कहार ने उसका जवाब लाकर उनके सामने हाथ में रख दिया। बेटा, मेरे लड़के तुम्हारे लड़के हैं, उन्हें उद्दंड देने का तुमको पूरा अधिकार है। इसकी शिकायत मुझे न कभी हुई है न होगी, बल्कि तुम्हारा मुझ पर अनुग्रह होगा यदि कभी कभी उनकी खबर लेते रहो। रहा घर का बंटवारा, उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। घर तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ। जो टुकड़ा चाहो मुझे दे दो, मुझे कोई आपत्ति न हो। हाँ, यह ध्यान रखना कि मैं बाहर बैठने का आदी हूँ, इसलिए दीवान खाने के बरामदे में मेरे लिए एक चौकी की जगह दे देना। बस यह मेरी हार्दिक अभिलाषा थी कि मेरे जीवन काल में विच्छेद न होता। तुम्हारी यही इच्छा है और तुम इसी में प्रसन्न हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ज्ञान शंकर ने पूज्य को जेब में रख लिया और मुस्कुराए। बुढ़ा कैसा घाघ है, इतनी नम्रताओं से तो उसने पिताजी को उल्लू बना लिया था। मुझसे भी वही चाल चल रहा है, पर मैं ऐसा गौखा नहीं हूँ। समझे होगे कि जरा दब जाऊँ तो वह आप ही दब जाएगा। यहाँ इसी विषमशाली विद्या का पाठ नहीं पढ़ा है। विवश होकर दबना तो समझ में आता है, पर किसी की खातिर से दबना केवल मुरव्वत के हाथों की कठपुतली बनना या निरी भावुकता है। ज्ञानशंकर बैठकर सोचने लगे, कैसे इस समस्या की पूर्ति करूं। केवल यह एक कमरा नीचे की दीवान खाने उसके बगल के दोनों कमरों को समता नहीं कर सकता। ऊपर के दो कमरों पर दयाशंकर का अधिकार है, पर ऊपर के दोनों कमरे मेरे, नीचे के तीनों कमरे उनके। यहाँ तो बड़ी सुगमता से विवाह हो गया, किंतु जनाने घर में यह पाठक इतना सुलभ नहीं। पर्दे की कम से कम दो दीवारें खींचनी पड़ेंगी। पूर्व की ओर निकास के लिए एक द्वार खोलना पड़ेगा और इसमें झंझट है। म्युनिसिपैलिटी महीनों का अलसेट लगा देगी। क्या हर्ज है यदि मैं दीवान खाने के नीचे ऊपर के दोनों भागों पर संतोष कर लूँ। जनाना मकान उन्हें किसे में डाल दूँ। यहाँ पर स्त्रियाँ भली भांति रह सकती हैं। जनाना मकान इससे बड़ा अवश्य है, पर न जाने कब का बना हुआ है। थोड़े दिनों में उसे फिर से बनवाना पड़ेगा। दीवारें अभी से गिरने लगी है, नित्य मरम्मत होती ही रहती है। छत भी टपकती है। बस मेरे लिए दीवान खाना ही अच्छा है। चचा साहब का इसमें गुजर नहीं हो सकता। उन्हें विवश होकर जनाना मकान लेना पड़ेगा। यह बात मुझे खूब सूझी। अपना अर्थ भी सिद्ध हो गया और उदारता का श्रेय भी हाथ रहेगा। मन में निश्चय करके वह स्त्रियों से परामर्श करने के लिए अंदर गए। वह सभ्यता के अनुसार स्त्रियों की सम्मति अवश्य लेते थे, पर वीटो का अधिकार अपने हाथों में रखते और प्रत्येक अवसर पर उसका उपयोग करने के कारण वह अवांछित सम्मति का गला घोट देते थे। वह अंदर तो गए, उन्हें बड़ा करुणाजनक दृश्य दिखाई दिया। दयाशंकर कचहरी जा रहे थे और बड़ी बहू आंखों में आंसू भरे उनको विदा कर रही थी। दोनों बहनें उनके पैरों से लिपट कर रो रही थी। उनकी पत्नी अपने कमरे के द्वार पर घूंघट निकाले उदास खड़ी थी। संकोच उस पति के पास न आ सकती थी। श्रद्धा भी खड़ी रो रही थी। आज अभियोग का फैसला सुनाया जाने वाला था, मालूम नहीं क्या होगा। घर लौट कर आना वदा है या फिर घर का मुंह देखना नसीब न होगा। दयाशंकर अत्यंत कातर देख पड़ते थे। ज्ञानशंकर भी देखते उनके नेत्र सजल हो गए। निकट आकर बोले, भैया आज मेरा हृदय शंका से कांप रहा है। ऐसा जान पड़ता है आप लोगों के दर्शन न होंगे, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। कौन जाने किस भेंट हो या न हो, दया का क्या आसरा। यह घर अब आपके सुपुर्द है। ज्ञानशंकर उसकी यह बातें सुनकर पिघल गए। अपने हृदय की संकीर्णता और क्षुद्रता पर ग्लानि उत्पन्न हुई। तस्कीन देते हुए बोले, ऐसी बातें मुझसे न मुंह से मत निकालो, तुम्हारा बाल भी बाका न होगा। ज्वाला सिंह कितने निर्दयी बने, पर मेरे एहसानों को नहीं भूल सकते। और सच्ची बात तो यह है कि मैं अभी तुम्हारे ही संबंध में बातें करने उनके पास से आ रहा हूँ। तुम अवश्य बरी हो जाओगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुझको इसका विश्वास दिलाया। चलता तो मैं भी तुम्हारे साथ, किंतु मेरे जाने से काम बिगड़ जाएगा। दयाशंकर ने अविश्वासपूर्ण कृतज्ञता के भाव से उनकी ओर देखकर कहा, हाकिमों की बात का क्या भरोसा। ज्ञानशंकर, ज्वाला सिंह उन हाकिमों में नहीं है। दयाशंकर, यह न कहिए, बड़ा विमुर्वत आदमी है। ज्ञानशंकर ने उसके हृदयस्थ अविश्वास को ताड़ कर कहा, यही हृदय की निर्बलता हमारे अपराधों का ईश्वरीय दंड है, नहीं तो तुम्हें इतना अविश्वास न होता। दयाशंकर लज्जित होकर वहां से चले गए। ज्ञानशंकर ने भी उनसे और कुछ न कहा। उन्होंने हारी हुई बाजी को जीतना चाहा था, पर सफल न हुए। वह इस बात पर मन में झुंझलाए कि यह मुझे उच्च भाव के योग्य नहीं समझते, मैं इनकी दृष्टि में विषैला सर्प हूँ। जब मुझ पर विश्वास अविश्वास है तो फिर जो कुछ करना है वह खुल्लम खुल्ला क्यों न करूं। आत्मीयता का स्वांग करना व्यर्थ है। इन भावों से वह लोग अब हाथी चढ़ने वाले नहीं। सद्भावों का वह अंकुर जो एक क्षण के लिए उनके हृदय में विकसित हुआ था, इन दुष्कामनाओं को झुलस गया। वह विद्या के पास आए तो उनसे पूछा, आज सवेरे कहाँ गए थे। ज्ञान शंकर, जरा ज्वाला सिंह से मिलने गया था। विद्या, तुम्हारी ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। ज्ञान शंकर, कौन सी बातें। विद्या, यही अपने घर के लोगों के हाकिमों से शिकायत करना। भाइयों में खटपट सभी जगह होती है, मगर कोई इस तरह के भाई की जड़ नहीं काटता। ज्ञानशंकर ने और चबा कर कहा, तुमने मुझे इतना कमीना इतना कपटी समझ लिया है। विद्या दृढ़ता से बोली, अच्छा मेरी कसम खाओ कि तुम इसलिए ज्वाला सिंह के पास नहीं गए थे। ज्ञानशंकर ने कठोर स्वर में कहा, मैं तुम्हारे सामने अपनी सफाई देना आवश्यक नहीं समझता। यह कहकर ज्ञानशंकर चारपाई पर बैठ गए। विद्या ने पति की बात कही थी और उन्हें मर्माहत कर दिया था। उन्हें इस समय विदित हुआ कि सारे घर के लोग यहाँ तक कि मेरे से भी मुझे कितना नीचा समझती है। विद्या ने फिर कहा, अरे तो यहाँ कोई दूसरा थोड़े ही बैठा हुआ है जो सुन लेगा। ज्ञान शंकर, चुप भी रहो, तुम्हारी ऐसी बातों में बदन में आग लग जाती है, मालूम नहीं तुम्हें कब बात करने की तमीज आएगी। क्या हुआ, आज भोजन न मिलेगा क्या? दोपहर तो आने को हो गई। विद्या, आज तो भोजन बना ही नहीं। तुम इन्हें घर बांटने के लिए चाचा जी को कोई चिट्ठी लिखी था, तब से बैठे हुए रो रहे हैं। ज्ञान शंकर, उनका रोने को जी चाहता है तो रोए, हम लोगों को भूखे मारेंगे क्या? विद्या ने पति को तिरस्कार भरी दृष्टि देखकर कहा, घर में जब ऐसा रार मचा हो तो खाने की इच्छा किसे होती है? चाचा जी को इस दशा में देखकर किसके कण के नीचे अन्न जाएगा? एक तो लड़की पर यह विपत्ति, दूसरे में घर में यह द्वेष। जब से तुम्हारी चिट्ठी पाई है सिर नहीं उठाया, तुम्हें अलग होने की यह धुन क्यों समाई है? ज्ञान शंकर, इसलिए कि जो थोड़े बहुत जायदाद बच रहे हैं वह भी इस पहाड़ में न चल जाए। पहले घर में 6,000 सालाना की जायदाद थी, अब मुश्किल से 2,000 की रह गई है। इन लोगों ने सब खा पीकर बराबर कर दी। विद्या, तो यह लोग कोई पराये तो नहीं है? ज्ञान, तुम जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगती हो तो मालूम होता है धन्ना सेठ की बेटी हो। तुम्हारे बाप के पास तो लाखों की संपत्ति है, क्यों नहीं उसमें से थोड़ी सी हमें दे देते? वो तो कभी बात भी नहीं पूछते और तुम्हारे पैरों तले गंगा बहती है। विद्या, पुरुषार्थी लोग दूसरे की सम्मति पर मुंह नहीं फैलाते, अपने बाहुबल का भरोसा रखते हैं। ज्ञान शंकर, लजाती तो नहीं हो ऊपर से बड़बड़ कर बातें करती हो? यह क्यों नहीं कहती कि घर की जायदाद प्राणों से भी प्रिय होती है और उसकी रक्षा प्राणों से भी अधिक की जाती है? नहीं तो 2,50,000 सालाना जिसके घर में आता हो उसके लिए बेटी दामाद पर 2-4 हज़ार खर्च के देना कौन सी बड़ी बात है? लाला साहब तो पैसों को यूँ दांतों से पकड़ते हैं और तुम इतनी उदार बनती हो, मानो जायदाद का कुछ मूल्य ही नहीं। इतने में श्रद्धा आ गई और ज्ञान शंकर घर के बंटवारे के विषय में उसे बात करने लगे।